ஓங்க ஜானதிமிரந்தஸ்யம் ஜானஞ்சனசலாகயம் சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமம். நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்ய தேச தாரிணே ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே தப்த கஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே வஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்தோப்ய ஏவச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமோ. நம மகாபதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம ப்ரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நம்னே கௌரத்வசே நமம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி ஸ்ரீ கௌர பக்த பிருந்தம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சத்வாஸ்கம் 15:47. ப்ரவ்ருதம் ச நிப்ருதம் ச த்விவிதம் கர்ம வைதிகம் ஆவர்த்ததே ப்ரவ்ருதேன நிப்ருதேனாஸ்நுதே மிருதம். ப்ரவ்ருதம் ச நிப்ருதம் ச த்விவிதம் கர்ம வைதிகம் ஆவர்த்ததே ப்ரவ்ருதேன நிப்ருதேனாஸ்நுதே மிருதம். पढ़ लीजिए
शब्दार्थ प्रवृतम भौतिक भोग के लिए झुकाव च तथा निवृत्तम भौतिक भोग का अंत च तथा द्विविधम इन दो प्रकारों कर्म कर्मों का वैदिकम वेदों द्वारा संस्तुत आवर्तते संसार के चक्र में ऊपर नीचे घूमता है प्रवृत्तेन भौतिक कार्यकलापों के भोग की प्रवृत्ति द्वारा निवृत्तेन ऐसे कार्यों को बंद करने से अश्नुते भोग करता है अमृतम शाश्वत जीवन। अनुवाद वेदों के अनुसार प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दो प्रकार के कार्यकलाप होते हैं। प्रवृत्ति कार्य का अर्थ है अपने को भौतिकवादी जीवन की निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था तक उठाना, जबकि निवृत्ति का अर्थ है भौतिक इच्छा का अंत। प्रवृत्ति कार्यों से मनुष्य भौतिक बंधन में कष्ट उठाता है, किंतु निवृत्ति कार्यों से वह शुद्ध हो जाता है और नित्य आनंदमय जीवन को भोगने के योग्य बनता है। तात्पर्य जैसा भगवद गीता में पुष्टि की गई है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। असुर या अभक्त प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के अंतर को नहीं जान सकते। वे जो चाहते हैं करते हैं। ऐसे लोग अपने को प्रबल भौतिक प्रकृति से स्वतंत्र मानते हैं, अतएव वे अनुत्तरदायी होते हैं और पुण्य कर्म करने की परवाह नहीं करते। निसंदेह वे पाप तथा पुण्य कर्म में अंतर नहीं कर पाते। भक्ति कभी पुण्य या पाप कर्म पर निर्भर नहीं करती, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवै पुंसान परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे अहितुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सारी मानवता का परम धर्म वह है जिससे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति आत्मा को पूरी तरह तुष्ट करने के लिए अहितुकी तथा अप्रतिहतित होनी चाहिए। फिर भी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उनके भक्त बनने की संभावना अधिक है, जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनम अर्जुन। हे अर्जुन, चार प्रकार के पुण्य आत्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। यदि कोई किसी भौतिक उद्देश्य से भी भक्ति करता है तो भी वह पुण्य आत्मा समझा जाता है, और चूंकि वह कृष्ण के पास आया है अतएव वह क्रमशः भक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएगा। तब वह ध्रुव महाराज की भांति भगवान से कोई भौतिक वरदान स्वीकार करने से इनकार कर देगा। स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। अतएव भौतिक प्रवृत्ति होने पर भी मनुष्य कृष्ण बलराम या गौर निताई के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है, जिससे वह सारी भौतिक इच्छाओं से तुरंत शुद्ध हो सके। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। जब मनुष्य पाप तथा पुण्य कर्मों की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है तो वह वापस भगवत धाम जाने का पूर्ण सुपात्र बन जाता है।
प्रवृत्ति च निवृत्ति च द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्तते प्रवृत्तेन निवृत्तेन स्मृते मृतम। सबसे पहले मेरा परम आराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् गौरगोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की अभय चरण कमल में समर्पित होकर कृपा प्रार्थना करके प्रणति ज्ञापन करके संस्था की संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज के चरण कमल में समर्पित होकर प्रणति ज्ञापन करके और कृपा प्रार्थना करके सभी साधु गुरु वैष्णव आचार्य लोग की चरण कमल में प्रणति ज्ञापन करता हूं और कृपा भिक्षा भी करता हूं, और इस क्षेत्र की सभी वैष्णव भक्त लोग की चरण कमल में प्रणति ज्ञापन करता हूं। हम सुन रहे हैं सातवां स्कंद में युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ में नारद मुनि का दिए हुए प्रवचन। प्रवृत्ति निवृत्ति द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्तते प्रवृत्ति न निवृत्ति न स्मृतमृतम। वेद में बार बार श्रीमद्भागवतम में ये बात आ रहे हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रभुपाद जी ने कई बार बहुत सुंदर व्याख्या की है, आप लेक्चर पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी का, प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है। और तात्पर्य की पहले प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरा असुरा। जो असुर श्रेणी के मानव होते हैं, हे तो मानव लेकिन असुर स्वभाव के होते हैं, उनको वेद का अंतर क्या है, प्रवृत्ति मार्ग क्या है निवृत्ति मार्ग क्या है उसको पता नहीं चलता है, उन लोगों को पता नहीं चलता है। वो सोचते हैं ना कर्म ही करना है, शादी ही करना है, पैसा कमाना है और मर जाना है। लोग और क्या बोलते हैं, साधु लोग जो भजन करते हैं ना भक्त लोग, उनको भी बोलते हैं तुम भी मरोगे हम भी मरोगे। उनको पता नहीं है, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग का जो व्याख्या है ना तृतीय स्कंद में विस्तृत विस्तार रूप से, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, इसको भोग मार्ग बोलते हैं। भोग में शरीर के धर्म पर स्थित रहना, इसको ऊंचाई अवस्था में लेना कैसे अच्छा भोग करूंगा। इसमें वेद में भी कोई कर्मकांड जो है ना वो जीव को भोग देता है, और क्या है, ये यज्ञ करने से ये फल मिलता है, ये कर्म करने से दान देने से इतना मिलता है, इसलिए लोग दान देते हैं ना, बड़ा बड़ा लोग दान देते हैं। क्या वो क्या होता है, कुंभ होता है ना, कुंभ में भोजन साधु को भोजन देने ये मिलता है ये मिलता है ये मिलता है। प्रवृत्ति मार्ग में धर्म अर्थ और काम घुमा फिरा कर तीनों काम करते हैं लोग। धर्म करते हैं क्यों, अर्थ के लिए। जितना मंदिर आप देख रहे हैं ना इस्कॉन मंदिर को छोड़कर, जितना मंदिर है सारी भारत में, उसका एक लक्ष्य है क्यों, अर्थ चाहिए नहीं तो सम्मान चाहिए। कोई कोई लोग अर्थ नहीं चाहता, उनका पास इतना धन है भगवान से सम्मान लेने के लिए भगवान को बैठा देते हैं, ठाकुर जी आप इधर बैठिए लेकिन सम्मान में प्राप्ति, ये मेरा प्राप्ति है, आप तो बैठिए इधर पत्थर होकर, इसलिए मंदिर बनाते हैं। पूजा सेवा कोई प्रेम नहीं है, मंदिर बनाते कमाने के लिए, सम्मान कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए, ये दो काम करते हैं ना बाहर के लोग। मंदिर जाते हैं ना बोलते हैं वो कितना सुंदर मंदिर बना है, वो आदमी बहुत पुण्यवान है, सम्मान मिला ना। धर्म करते अर्थ के लिए, और अर्थ कमाने क्या जरूरत है, अर्थ क्यों कमाते हैं, काम के लिए। धर्म अर्थ और काम ये चक्कर में फंसते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग। और काम का क्या व्याख्या है, काम का जो चार है ना, आहार भोजन करना है, सोना है और आत्मरक्षा करना है और देहसु करना है, सहवास करना है, ये चार है। तो प्रवृत्ति मार्ग में लक्ष्य क्या हो गया, धर्म को लेकर वही चार काम करते हैं, इस शरीर का सुख का पीछे भागते हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में प्रभुपाद जी ने ये बोला है ना इधर निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था तक उठाना, जबकि निवृत्ति का अर्थ भौतिक इच्छा को अंत करना है। प्रवृत्ति कार्यों में कार्यों से मनुष्य भौतिक बंधन में कष्ट उठाता है, बहुत कष्ट है प्रवृत्ति मार्ग में। ये भागवत निवृत्ति धर्म है। अब प्रवृत्ति धर्म क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। अरे संसार में हम इतना कष्ट उठा रहे हैं, ये हम भक्त लोग के लिए है, बाहर लोग को पता नहीं है कष्ट क्या है, हम लोग को पता है कष्ट क्या है। और कुंती देवी ने यही बताया है भवेस्मिन् क्लिश्यमानानं अविद्या काम कर्म भी। ठाकुर जी अब क्यों आते हैं? ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करते, ठाकुर जी रथ का ऊपर बैठे हैं और कुंती ये प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानं अविद्या काम कर्म भी। हम प्रवृत्ति मार्ग में है ना, हमको ठाकुर खींचने के लिए आए हैं, निवृत्ति मार्ग को लेने के लिए ठाकुर जी आए हैं। लीला कर रहे हैं ना ठाकुर जी, इतना लीला क्यों कर रहे हैं? श्रवण कीर्तन हम करेंगे तो निवृत्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानं अविद्या काम कर्म भी। इतना कष्ट उठा रहे हैं हम इस शरीर से, संसार से, जितना कर्म हम कर रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं, क्यों? पहला अविद्या है। अविद्या क्या है रूपा जी? अविद्या क्या कहते हैं? शरीर को आत्मज्ञान करना, ये अविद्या है। अविद्या का ये पहला सोपान है। चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, अगर ये सोचता है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर सुख में मेरा भलाई है, वो अज्ञान में, अविद्या में। और अविद्या का बात क्या होता है? काम। अविद्या ततः काम। शरीर को आत्मज्ञान करने से कामना आ जाता है, ततः कर्म। अविद्या से सब जन्म हुआ है ना, अविद्या जननी हो गया, मां हो गया। मां से जैसा बेटा बेटा बेटी पैदा होते हैं ना, यही होता है। अविद्या, अविद्या से काम, भुगने का इच्छा होता है। आप ये मत सोचिए, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है लेक्चर में शायद, ये चार आश्रम है ना हमारा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तीनों आश्रम निवृत्ति धर्म के। हम तीनों, वानप्रस्थ जो है और ब्रह्मचारी जो है सन्यासी, गृहस्थ लोग सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग में, उनको कंसेशन है। शादी क्या है? ये कंसेशन है, ठीक है, तुम कंट्रोल में नहीं रहते हो, प्रवेश करो। ये भी एक आश्रम है, उधर भी ठाकुर जी का सेवा करना है और फिर निवृत्त धर्म को वापस आना है। लक्ष्य तो वही है, ये मत सोचिए शादी करना हमारा लक्ष्य है। कभी कभी भक्त लोग ऐसा सोचते हैं ना, ये भी धर्म है। नहीं 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 नहीं, हमारा धर्म यही है, निवृत्ति धर्म को जाना है। शरीर श्रृंखलित नहीं होता है तब तो हम गृहस्थ धर्म में जाते हैं, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य निवृत्त धर्म गाना है। इसलिए तीनों जो आश्रम है, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और संन्यास, तीनों आश्रम में यौन जीवन जो है देह सुख नहीं है, कि यही तो बंधन है। और क्या बंधन है? जीव भगवान के अंश है, कितना आनंद लेना चाहिए जीवन में, लेकिन हमको क्या आनंद मिलता है? थोड़ा भूख लगता है ना, कितना कष्ट उठाता है, रोग हो जाता है, नींद आता है, शरीर अविद्या जाल। आनंद की जाल में हम रहना चाहिए। आनंद चिन्मय रसः प्रतिभाविता भी। आत्मा का यही स्थिति है, लेकिन वो शरीर का जाल में फंस गए। क्यों फंस गए? यही प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग में आकर, भोग मार्ग। कभी भक्त लोग कभी ये नहीं सोचना चाहिए, इस जन्म में यही मेरा धर्म है, बहुत पैसा कमाना है, ये फ्लैट वगैरह बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो थर्ड क्लास आइडिया है। कभी कभी मन में कंसेशन आ जाता है ना, पैसा नहीं कमाऊंगा, ठाकुर जी का सेवा कैसा होगा? ये ठाकुर जी क्या हमारा पनीर पायस, थोड़ा बड़ा बड़ा मुकुट पहनकर ही ठाकुर बनते हैं क्या? ठाकुर के पास सब कुछ है, वो तो प्यार का भिखारी है, हमसे ही प्यार चाहते हैं। हमारा भजन में अगर ये प्रतिबंधक हो, चाहे धन हो, कोई भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए। हमको निवृत्ति धर्म में आना चाहिए। क्यों? अगर प्रवृत्ति धर्म में हम टिक जाएंगे ना, फिर जन्म लेना होता है। आवर्ते न प्रवृत्ते न, जन्म जन्म और मरण चक्र में फिर हम आ जाएंगे। अरे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की यही शिक्षा दिया है, आमी कृष्ण नित्य कृष्ण दास यही कथा भूले, आमी नित्य कृष्ण दास यही कथा भूले, मायार न फरहया चिरदिन बुले, मायार न फरहया चिरदिन बोले, आमी नित्य कृष्ण दास यही कथा भूले, आमी नित्य कृष्ण दास ये बात भूल गए हैं। और निवृत्ति मार्ग ये हर बार हमको सचेतन जागृत करता है कि तुम कृष्ण का दास हो, इस संसार का दास नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं है हमारा, लेकिन संसार की ऊपर स्थिति को जानने के लिए ये आश्रय हम ले रहे हैं, इधर कोई कर्म किया है, कर्म की वजह से इधर जन्म हुआ है, लेकिन ये हमारा स्थान नहीं, हमको जाना है ऊपर। प्रभुपाद जी ने इसलिए देखिए ना फोटो प्रभुपाद जी से करते, ऊपर जाइए ऊपर जाइए, हम तो नीचे वाले हैं हर समय वही खाना पीना सोना शादी करना पैसा कमाना इसी में लगे रहते, कीड़ जैसा मल में कीड़ा होता है ना वो जैसा, उधर ही संसार करते हैं। प्रभुपाद जी ने बोलते हैं ना उधर ही संसार करते हैं, उधर विनाश हो जाता है, जन्म इधर और उधर ही शादी वगैरह हो जाता है, उधर ही मर जाते हैं, हमारा यही हालत है, जन्म इधर होता है यही और मरते भी इधर नहीं, इसका ऊपर जाना चाहिए। आमी कृष्ण नित्य कृष्ण दास, प्रभुपाद जी का कितना शक्ति था आप देखिए, हम भारतीय लोग हैं, हमारा संस्कृति है, हमको पता है जगन्नाथ क्या है, रास बिहारी क्या है, ठाकुर जी क्या है, हमको कुछ कुछ पता है, फिर भी हम सेवा नहीं करते हैं, भजन में मन नहीं लगता है। प्रभुपाद जी का कितना शक्ति था, जो विदेशी लोग है पता नहीं है भगवान क्या है, भगवान क्या है उनको खुद पता नहीं, वो खुद सोच, जिसका पास पैसा हो गया वो सोचते कि हम भगवान है, दो चार शादी करना है फ्लैट वगैरह लाना है दो चार फ्लैट तब तो वो भगवान हो जाते। प्रभुपाद का कितना शक्ति था, उन लोग का क्या बोलते आप, जैसा कण कण में ये भावना जागृत कर दिया कि मैं भगवान की दास। देखिए ना ये मंदिर किसी ने बना है जो प्रभुपाद की शक्ति से बना है, अभी हम भोग रहे नहीं लुटा रहे हैं, क्या किए हैं हमने, इतना शक्ति था। एक ही पॉइंट यही, आमी कृष्ण नित्य दास यही कथा भूले, उसका बाद मायार नफर है, नफर का ये बंगाली शब्द है, नफर का मतलब पता है ना, नौकर, कोई बड़ा ऑफिसर होता ना बोलता मैं ऑफिसर है, तुम ऑफिसर किसका ऑफिसर हो, माया का नफर हो, नौकर सब माया का नौकर है। हमारा जो डिपार्टमेंट चल रहा है ना, हमारा हेड ऑफिसर कौन है, माया देवी है, माया देवी का नौकर हम सब है, सब माया देवी का नौकर है। चिरदिन बोले घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर उधर, हमको निवृत्ति मार्ग में आना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। निवृत्ति मार्ग क्या है, आहार निद्रा और भय और मैथुन, ये जो चार चीज है ना प्रवृत्ति मार्ग में, ये प्रभाव फैलाए हमारा ऊपर, उसको छोड़ना है। भोजन शरीर के लिए जितना जरूरत है उतना, सोना भी इतना, अरे एक छोड़ना है, क्या छोड़ना है, बिल्कुल उसको छोड़ देना है, मैथुन ये नहीं करना है, इसका ऊपर हमको जाना है। निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं। एक साधु था, ने पढ़ा था किताब में, वो चेला था, चेला गुरु का पास हर समय, पहले जमाने में ऐसा था ना, गुरुजी जहां जाते हैं चेला उनका पीछे पीछे जाते हैं, जय श्री श्री गौर नेता है, श्री श्री राधारास बिहारी, श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, चेला पीछे पीछे जाते थे। तो गुरुदेव ने लघु शंका, क्या बोलते हैं इसको, पेशाब, बाथरूम समझ, कितने हिंदी मुझे इतना पता नहीं है। लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए बैठ गया। एक पेड़ था, पिपल का पेड़, पिपल बोलते हैं ना, पिपल, पिपल का पेड़, बहुत बड़ा पिपल का पेड़ था, उसका नीचे बैठ गया। थोड़ा दूर में, नीचे नहीं, पीपल का पेड़ का नीचे नहीं बढ़ते हैं, बेल बेल गच्छ है ना, उसका नीचे नहीं बढ़ते हैं, नारियल उधर नहीं, ये नहीं, बाथरूम वगैरह नहीं करना चाहिए। ये सूर्य स्वर्गीय वृक्ष है, आम्र, आम है ना, आम, आम, नारिकेल, बेल वगैरह और पीपल, बटवृक्ष, थोड़ा दूर से। अब वो बैठ गए तो पानी, हम प्रसाद जाने के बाद, लघु शंका जाने के बाद पानी मंगा दे ना, थोड़ा पानी दो। तो बुढ़ा हो गए तो चेला को बोला कि थोड़ा पानी ला, पीछे से ऐसा हाथ दिखाया, वो पानी दिया। शौच होने का बाद जो शौच हो रहे थे, पानी ले रहे थे, तब हंस रहे थे। शिष्य का संदेह, अभी लघु शंका गुरुदेव कर रहे हैं, हंस रहे हैं क्यों? क्या इधर तो कोई दृश्य नहीं है, आगे देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव हंस रहे हैं। जब लघु शंका समाप्त हो गया, गुरु जी का शौच क्रिया समाप्त हो गया, तब शिष्य ने पूछा, आप क्यों हंसा? तुम भागो इधर से, तुम शिष्य हो, तुमको पता नहीं चलता है गुरुजी क्यों हंस रहे, तुम कौन सा शिष्य हो? अरे हमको कुछ ही पता नहीं है, बोलने से हम सुन रहे थे ना, दो दिन का पीछे सुन रहे थे, हम तो चार नंबर की है, एक नंबर तो शिष्य हम नहीं है, दो नंबर की भी नहीं है, बात तो नहीं मानते, तीसरे वाला तो कोई कोई है, अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं है, गुरुजी का वाक्य मानते, आज चौथे वाले हम है, गुरुजी का मल मूत्र की समान है हम, ये बराबर नहीं है नीचे है, समान भी नहीं। तो गुरुजी ने भगाया उनको, चलो जब तक ये प्रश्न का उत्तर तुम्हारा मन में नहीं है, मैं तुमको सेवा का अधिकार नहीं दूंगा, भागो इधर से। पहले जमाने में इतना शासन था, अभी हम शासन करेंगे तो क्या करेंगे? वही गुरुजी थोड़ा लाठी लेकर चलाएंगे ना, जैसा वही पशु था हम ऐसा ही पशु हो जाएंगे। हम क्या फायदा लेते हैं, ज्यादा फायदा लेते हैं गुरुजी का स्वभाव के ऊपर हम स्टडी करते हैं, गुरुदेव कुछ नहीं बोलते हैं तब तो फायदा ले जाते हैं हम, नहीं वो दया जो करते हैं बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए दया करते हैं। पहले जमाने में तो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के साधु थे, तो स्वभाव होता है, दूसरा दूसरा साधु का दूसरा दूसरा स्वभाव होता है, तो उन्होंने भगा दिया, कहे चलो जब तक ये प्रश्न का उत्तर तुमको नहीं मिलेगा कि मैं लघु शंका की समय क्यों हंसा, तब तक तुम सेवा अधिकार नहीं मिला। तब ये रोना चालू कर दिया। गुरुदेव बोला नहीं, तू रो धो जो भी करो, इधर चलो। और सब साधु का आश्रम में गया, पूछा कि मेरा मुझे थोड़ा मदद कीजिए ना, क्या मदद है? मेरा गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे तो हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे बताइए। तो उन्होंने बोला ये पागल है क्या, गुरुजी तुम्हारा गुरुजी क्यों हंस रहे थे लघु शंका के समय, हमको कैसा पता चलेगा, हमको कैसा पता चलेगा? तो सारे भारत में जितना बड़ा बड़ा साधु था उनका पास गया, तब तो सोचा कि कोई उत्तर नहीं दिया, तब सोचा कि मैं मर जाऊंगा। कुआं था, बड़ा कुआं था, कुआं का ऊपर बैठा, सोचा कि मैं आत्महत्या कर दूंगा, ये गुरुजी तो सेवा नहीं देंगे, शिष्य का यही जीवन है सेवा करना। आजकल हमारा गुरुदेव कहा करते थे, आजकल नामधारी और वेशधारी, समझते हैं ना, नाम धारण करने थे, मेरा नाम हो गया, ये हो गया, और वेशधारी, वेश धारण करने थे। आजकल नामधारी और वेशधारी शिष्य ज्यादा है, शिष्य का मतलब यही है गुरु जी का सेवा करना, बस इधर उधर नहीं, कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव ये कहा करते थे, जैसा टेबल इधर उठा को, इधर उठा से हम उठा लेंगे, इधर रख लेंगे, बस उधर ही रहेगा। शिष्य ऐसा है, तुमको बोला ये करने के लिए इतना ही करो, इधर उधर नहीं। शिष्य होने का यही तात्पर्य है, क्योंकि जब तक हमारा स्वतंत्रता है तब तक भक्ति हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान स्वतंत्र नहीं है। भगवान क्या है? भगवान भक्त का अधीन में रहते हैं। हम सोचते हैं मैं स्वतंत्र होऊंगा, जो स्वतंत्र होने से भक्ति आएगा? भगवान भक्त का अधीन में है और भक्ति भी भक्त का अधीन में है, और हम जब भक्त का अधीन होंगे तब तो भक्ति हमारा अंदर में आएगी, तब नहीं आएगा। चाहे आप कितने क्वालिफाइड है, कितना दक्ष है, लेकिन आप किसका अधीन में है? ठाकुर जी यही देखते हैं, भक्त का अधीन में नहीं है, गुरु जी का अधीन में नहीं है, परंपरा की साधु का अधीन में हम नहीं है ना, तो कभी नहीं मिलेगा ठाकुर जी। छोड़ दीजिए, भगवान ऐसे नहीं है साधन भजन करके आप प्राप्ति कर लेंगे, नहीं नहीं, वो भी भक्त का अधीन है। नाहं आत्मन मासे मद भक्त साधु विना श्रेय चात्यंतिक ब्रह्मन ये साम गति महम परा। वैकुंठ में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, मूल्यवान प्रवचन है। भगवान कभी वैकुंठ में ऐसा प्रवचन कभी नहीं दिया है, दुर्वासा को बताया, एक ब्रह्मचारी को। संसार में सबसे बड़ा तपस्वी ब्रह्मचारी का पास भक्त तत्व बोल रहे थे, और बार बार ये ठाकुर का हृदय को बिघलने के लिए ये बोल रहे थे मैं ब्रह्मचारी हूं। दुर्वासा, आप गृहस्थ को सपोर्ट करते हैं, अम्बरीश तो एक गृहस्थ है, राजा है, उनका पास इतना धन है, बीवी बेटा है, आप उनको सपोर्ट करते हैं, मेरा पास कुछ नहीं है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। ठाकुर जी बोले क्या अगर तुम ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, मेरा तो स्वभाव यही है, मैं भक्त का अधीन में रहता हूं, ये मेरा स्वभाव है। तुम्हारा जैसा स्वभाव है मेरा भी ऐसा ही स्वभाव, भगवान का यही स्वभाव है, दूसरा कुछ स्वभाव भगवान का नहीं है, भक्त का अधीन में रहते हैं, हमको भी भक्त का अधीन में रहना होगा। ठाकुर जी ऐसा बोल दिया, नाहंग आत्मना आशीष मद भक्त साधु बिना, मेरा साधु भक्त का सिवा मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता। आत्मना आशीष, आत्मन मतलब हमारा शरीर को हम आत्म बोलते हैं। ठाकुर जी बोला मेरा शरीर भी नहीं चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे ये सच्चिदानंदमय शरीर को इंगित करके ठाकुर जी बोल रहे, ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, मेरा साधु भक्ति चाहिए। श्रीय चात्यंतिका ब्रह्मन, हे ब्रह्मन दुर्वासा, ये वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो छह भाग है, मैं भगवान हूं ना, जो छह ऐश्वर्य इसको भी नहीं चाहता। येषां गतिम अहम परा, भक्त का मैं ही गति हूं, और मेरा गति कौन है? भक्त। भगवान यही बोल रहे हैं, चकित हो गए, चकित हो गए, तब तो दुर्वासा वापस आया ना। शिष्य का यही बात मैं बोल रहा था ना, शिष्य का यही है जीवन, गुरुजी का सेवा करना, और सेवा से वंचित जो हो जाते हैं ना, गुरुजी की सेवा नहीं करते हैं, तो है तो शरीर में लेकिन मृत सब है। छोटा हरिदास ना, इसलिए शरीर त्याग कर दिया, इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अगर इस शरीर से सेवा नहीं लेते हैं, शरीर का क्या मूल्य है, छोड़ देना चाहिए। आजकल तो हम सेवा चोर हो गए, ठग बोलते ना, ठग हिंदी में बोलते हैं, ठग सेवा दो, ये हमारा जमाने में नहीं है, तो आ रहे हैं परंपरा, आलसी लोग आ जाते हैं ना, अनाधिकारी लोग, अधिकार नहीं है, घुस जाते हैं। अरे साधु बनते हैं हम लोग सेवा करने के लिए, दूसरा कुछ भी काम नहीं है। सेवक का मतलब यही है, कोई डिमांड नहीं है, नो डिमांड, नो डिजायर, नो डिमांड, कोई कामना नहीं है। डिमांड का मतलब क्या होता है हिंदी में? मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है, तो सेवक है तो सेवा करना है, और क्या करना है, कुछ नहीं, यही सेवक। तो त्याग दिए शिष्य को, तो शिष्य ने सोचा कि ये शरीर त्याग दूंगा, गुरुजी सेवा नहीं लेते तब तो क्या है शरीर। गुरुजी जब त्याग कर देते शिष्य को, वो असत शिष्य हो गया, जैसा पति त्याग कर देते पत्नी को और असत नारी हो गया। तो मरने जा रहे थे तब एक साधु ने प्रकट हुआ, देखा कि मर जाएगा, एक साधक है, छोटा बात में मर जाएगा ना, तो बोला तो क्यों तुम मरने जा रहे हो? नहीं, मेरा गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे। कहां कर रहे थे? वो साधु पूछ रहे कहां कर रहे थे। ये पीपल का पेड़ का पास आस पास। तो क्या हुआ ना, गुरुजी ने हंसा, अच्छा अच्छा हंस रहे थे, तो इसका कारण मुझे पता नहीं है, तब गुरुदेव ने मुझे निकाल दिया है ना, मुझे पता है मुझे पता है। ये उदाहरण क्यों इधर आ रहे हैं? आप सोच रहे हैं ना, हम ऐसे हैं, कितना बलवान जीव है, ठाकुर जी को बस कर लेता है। ठाकुर जी ये बोल रहे हैं ना, साधु ही ग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त है जनप्रिय, ये तो ब्रह्मांड को धारण किए ठाकुर जी, लेकिन भक्त का बस में हो जाता है दुनिया को नचाने वाले को हम नचाएंगे, ये छोटा बात नहीं है। ठाकुर जी इसका अंदर में रह जाते हैं ना, संसार को सब देखिए ना, प्रभुपाद जी ने क्या किया है संसार को नचाने वाले थे, भक्त को भक्त बनाना ये बड़ा बात नहीं, भारतीय लोग को भक्त बनाना, जैसे हम लोग अभी भक्त इसकन लोग भक्त बनाते हैं ना बहुत, ये कोई बड़ा बात नहीं, हम लोग का संस्कार है ना, हम लोग का आध्यात्मिक संस्कार कुछ है। पापी को भक्त बनाना यही स्टैंडर्ड है भक्त का, कितना पतित थे, इसलिए वो भजन में लिख रहे हैं ना, भक्त का ठाकुर जी को धारण करके उनका इतना शक्तिवान हो जाते हैं, ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जाने, ब्रह्मांड तारीत धरे जने जाने, ये वेद पुराना गुण गाए जे बासुने, ये वेद पुराना गुण गाए जे बासुने, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। जो भक्त प्रभुपाद जी से भक्त ठाकुर जी को जो बस कर लेते हैं ना, ये ब्रह्मांड को तारण करने का शक्ति है। हम लोग का उद्धार नहीं होगा इस कर्म में हम लोग का विश्वास नहीं है गुरु जी का चरण में, प्रभुपाद जी का चरण में। भुवनेश्वर में भागवत कथा हो रहा था, यही प्रसंग चल रहा था। आप ये मत सोचिए वासुदेव दत्त क्या क्या संकल्प किए थे, प्रहलाद महाराज ने क्या संकल्प किए थे, जो ठाकुर जी ब्रह्मांड में जितना जीव है सबको उद्धार कर दीजिए। तो आप सोच रहे हैं क्या प्रभुपाद इससे कम है, हम क्या सोच रहे हैं, प्रभुपाद का ये इच्छा नहीं कि ब्रह्मांड में सब जीव का उद्धार हो, प्रभुपाद कहां गए हैं अभी है। ये भक्त का भाव है, शुद्ध भक्त का यही, ब्रह्मांड में सब जीव जब वैकुंठ जाएंगे तब तो प्रभुपाद वैकुंठ जाएंगे, अभी इसकन में हम लोग को ये विश्वास करना चाहिए। जैसा प्रहलाद महाराज ने बोला ना, नहीं नहीं ये असुर को उद्धार करने का बाद में जाऊंगा, अरे चैतन्य महाप्रभु को यही प्रार्थना किया वासुदेव दत्त ने, आप ये ब्रह्मांड में सब जीव को उद्धार कीजिए तब मैं जाऊंगा। साधु का हृदय ऐसा हो जाता है, ये तो हमारे सम्मुख में प्रकट नहीं होते लेकिन है, शक्ति में है, सब जीव को उद्धार करने का संकल्प लेते हैं वो लोग। इस शुद्ध भक्त का ठाकुर जी को बस किए है ना, दया का सागर हो जाते हैं, ब्रह्मांड को तारण करने का शक्ति उनका है। मैं दोस्त आ गए इधर, तुम्हारा गुरुजी हंस रहे थे ना, पता नहीं है तुमको, मुझे पता है ना, किसे पता चला आपको, पीपल का पेड़ का कुछ दूर में लघु शंका कर रहे थे। अच्छा अच्छा क्यों हंसा तुमको पता है ना, नहीं नहीं जो लघु शंका कर रहे थे ना, जल जाता है ना फिर सब जाता है ना पानी में, एक पीपल का क्या था फल, वो पानी में क्या हो रहा था, क्या बोलते उसको, फ्लोटिंग तैर रहा था, इधर उधर जा रहा था, और उसको देखकर गुरुजी हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, वो पानी में तैर रहे ना, इधर उधर जा रहा है, लघु शंका जा रहा है फिर सब जा रहा है, उसको देखकर हंस रहे थे गुरुजी। क्यों हंस रहे थे, जीव को दशा को देखकर, आज देखिए ये पीपल का पेड़ कितना शक्तिवान है उसका बीज नीचे हो गया ना। देखिए पीपल कितना शक्तिमान, कितना विशाल वृक्ष है, लेकिन गिर गया थोड़ा, वो फल वृक्ष से अलग हो गया। अभी लघु संख्या में पेड़ साफ में इधर उधर चले जाते हैं। जीव का हालत ऐसा ही है, हम लोग का हालत ऐसा ही है, कितना शक्तिवान हम आत्मा है, लेकिन यही प्रवृत्ति मार्ग में हम घुस कर शहर आहार निद्रा भय मैथुन इसी में बस चर्बित चर्बण करके हमारा हालत ऐसा है। अब भक्तिविनोद ठाकुर ने यही लिखा है ना, मायार बसे, हाँ भैसे यही शब्द लगा है, मायार बसे जाच्छ भैसे खाच्छ हाव डुबुआ है। ये अवस्था, कभू राजा कभू प्रजा कभू विप्र शूद्र, कभू राजा कभू प्रजा कभू विप्र शूद्र, कभू सुखी कभू दुखी कभू कीट क्षुद्र, कभू सुखी कभू दुखी कभू कीट क्षुद्र। ये जन्म जिसा ओ कौन सा फल, पीपल का फल इधर उधर जा रहा था ना पानी में फिर साफ में, हमारा हालत ऐसा ही, कभी राजा कभी राजा बनते हैं, कभी प्रजा बनते हैं, कभी कीट बनते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति लक्षण शैव त्रैगुण्य विषय मुने यशावलीन प्रकृति गुण सर्ग पुनः पुनः। सिक्स्थ कैंटो में पहला चैप्टर में ये प्रश्न कर रहे परीक्षित महाराज, प्रवृत्ति मार्ग में पुनः पुनः शरीर मिलता है, गुना सर्ग पुनः पुनः गुण का संग होता है, कभी सत्व गुण कभी रज गुण कभी तम गुण, उनका संग से जीव का यही गति होता है, उत्थान पतन चलता है। लेकिन हम आए हैं किस मार्ग पर, निवृत्ति मार्ग पर। इधर सेंस एंजॉयमेंट नहीं है, इंद्रिय प्रीति नहीं है, काम नहीं है। काम को मिटाने के लिए ये भक्ति पथ पर हम आए हैं। ये सोच लीजिए, शरीर मिला है अविद्या काम कर्म भी, कर्म करने के बाद भी क्या होता है, फल भोगना पड़ रहा है, फिर कामना आ गया, शरीर मिला तो कामना, दूसरा शरीर में कामना था, इसको भोगने के लिए ये शरीर मिला, और इस शरीर में कितना कामना हुआ और हो गया, फिर शरीर मिलेगा, शरीर है तो कामना है, कामना तो शरीर देता है, बस चला। अंत होने वाला कब, जब ये निवृत्ति मार्ग में हम आएंगे। ये निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग में भागवत धर्म को निवृत्ति मार्ग बोलते हैं। इसमें आहार शरीर का जो धर्म है उसको दबाना है। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में बताए हैं, When our eating, sleeping, mating and depending became zero, then we are eligible to go to Golok Vrindavan. Eating, sleeping, mating and depending became zero. Zero होना है, खाना सोना ये zero होना है। Zero का मतलब क्या है? तो आप सोचेंगे zero का मतलब आज से मैं खाना छोड़ दूंगा, मर जाएंगे तो आप भक्ति क्या करेंगे? Yes, mating is sex zero होना चाहिए, और eating, sleeping और डिपेंडिंग ये तीन शरीर को चलाने के लिए जितना चाहिए, शरीर को चलाने के लिए कभी ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये निवृत्ति मार्ग में हमको आत्म चेतना जागृत करना है। मैं ठाकुर जी का दास हूं, ये दास पद पर टिक कर रहना है, दूसरा काम नहीं करना है। इसको चलाने के लिए संसार को क्या बोलते हैं उसको, एक हमारा मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में भी था, और एक कंपल्सरी होते हैं और एक क्या होता है ऑप्शनल है। शादी वगैरह जो काम करते हैं ना, ये ऑप्शनल काम है, करे तो करे नहीं करे तो नहीं करे। इसे कोई ये हम लोग के लिए, बाहर लोग ऐसा मत बताइए आप, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। ये बाबा जी लोग जगत को सिखाते कि तुम शादीवादी मत करो, नहीं नहीं हमारे लिए प्रवृत्ति मार्ग भक्त के लिए। बहुत जन्म से कर्म किए हैं हम, शरीर का कर्म, इस जन्म में आत्म का कर्म करना चाहिए, ठाकुर जी का सेवा, सिर्फ ठाकुर जी का सेवा जितना समय हो निकाल लेना चाहिए। आत्मधर्म, धर्म का यही लक्ष्य है। आजकल क्या हो गया, जैसा कुत्ता का, कोई कुत्ता है, बहुत कुत्ता रहते हैं, उसका भीतर अगर एक शेर ढुक गया, शेर आ गया भीतर, वो क्या करेगा, उसका स्वभाव क्या हो जाएगा, वो खा जाएगा, छोटा है ना, बड़ा है तो खा जाएगा, छोटा शेर है वो कुत्ता का भीतर रह जाएगा, ये कुत्ता ही बन जाएगा, भीतर रह गया उनका, भीतर उनका संघ का प्रभाव आ गया, छोटा है ना बचपन में, वो बढ़ेगा तो तब ताकतवान होगा ना, लेकिन बढ़ने से पहले तो कुत्ता का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। इस संग बहुत बलवान है, इसलिए हमको सावधान, भागवत सावधान कर रहे हैं। लेकिन धर्म का क्या अर्थ है, धर्म का यही अर्थ है, भोगना नहीं, कभी नहीं, निवृत्ति है, छोड़ना है, शरीर को तपाना है। ये भोग डिमांड करते हैं ना, भोग मांग करते हैं, ना बज गया मुझे चाहिए, नहीं हमको अभी नहीं, दो घंटा का बाद, शरीर को ऐसा तपाना है। वो जो डिमांड करता है हमको, ये दूसरा डिमांड देना है, नहीं मुझे ठाकुर का सेवा अभी करना है, इसके लिए बल चाहिए ना। इसलिए पहला, हाँ प्रथम स्कंद में है ना, धर्मस्य अपवर्गस्य ना तो अर्थाय कल्पति, धर्म का लक्ष्य अर्थ नहीं है, क्या है, अपवर्ग है, मुक्ति है। हम जो भक्ति पथ पर हैं, हमारा लक्ष्य मुख्य निवृत्ति मार्ग में, यही लक्ष्य है। प्रवृत्ति मार्ग में काम, धर्म अर्थ काम, मुख्य नहीं। ये संसार को हम छोड़ना है किसी भी हिसाब से, हमारा लक्ष्य, धर्म का यही लक्ष्य है, अर्थ लक्ष्य नहीं। जब अर्थ लक्ष्य हो जाता है ना भक्त का भी जीवन का, तो नुकसान हो गया। कभी अर्थ हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, भागवत अपवर्ग। हमारा अपवर्ग शब्द भक्ति में लगता है क्या, मुक्ति नहीं है, हमारा अपवर्ग क्या है, कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति हमारा अपवर्ग है। धर्मस्य अपवर्गस्य ना तो अर्थाय कल्पते, धर्म का चरम लक्ष्य अर्थ नहीं है, भक्त होकर भी अर्थ का पीछे दौड़ना ही नुकसान, जीवन में नुकसान, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है भक्ति। उसका बाद क्या है, नार्थो धर्म एकांतस्य कामलाभ स्मृतः, अर्थ का क्या लक्ष्य, अर्थ क्यों कमाते हैं, काम के लिए नहीं, ये अर्थ नहीं है, अर्थ का लक्ष्य है धर्म, अर्थ कमाएंगे ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे बस। जब कमाने का स्वभाव है और पूर्व जन्म का पुण्य है तो अर्थ आ जाएगा, ठीक है भगवान की सेवा में लगाना, अर्थ का लक्ष्य काम नहीं है, तो काम का लक्ष्य क्या हुआ, तो धर्म का लक्ष्य अर्थ नहीं है और अर्थ का लक्ष्य काम भी नहीं है, अर्थ का लक्ष्य क्या हुआ, धर्म, धर्म का लक्ष्य क्या हुआ, मुक्ति, तो काम का लक्ष्य क्या है, कामना आता है ना, क्या लक्ष्य है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति ही लाभे जीवित जावता, काम का लक्ष्य इंद्रिय प्रीति नहीं है, कामना आता है ना, जावत जीवित जावता, जितने जी जाएंगे, शादी इसलिए करते हैं एंजॉयमेंट के लिए नहीं। कभी प्रभुपाद जी ने कितना सुअर कुत्ता जैसा एंजॉयमेंट करते हैं, इसीलिए शरीर नहीं मिला है, भोग करो नहीं नहीं, भक्ति डायरेक्ट भक्ति करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तब तो उसको थोड़ा कंसेशन देकर फिर यही निवृत्ति मार्ग में आना है। हम क्या करते हैं, घुस जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, आने का चिंता भी नहीं है, घर छोड़ना है ये चिंता किसका मन में आता है, मतलब मुझे बताइए ना, मुझे घर छोड़ना है, संसार छोड़ना है कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं, लेकिन घर छोड़ना है। प्रभुपाद जी ने यहां तक भागवत में कौन सा स्कंद में जड़ भरत की उपाख्यान प्रभुपाद ने, ये कंपल्सरी है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, वानप्रस्थ लेना ये कंपल्सरी, घर छोड़ना कंपल्सरी, यहां तक प्रभुपाद जी ने, स्वप्न भी नहीं देखते, घुस जाते हैं भीतर ना। धर्म का अर्थ अपवर्ग है, अर्थ नहीं है, अर्थ का लक्ष्य धर्म है, काम नहीं है, काम का लक्ष्य इंद्रिय प्रीति नहीं है, सेंस प्लेजर नहीं है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभे जीवत जावता, खाना पीना जितना इस शरीर में चलाने के लिए, तो जिए अगर कोई सुनेगा ना वो पूछेंगे जीना का क्या मतलब है, पैसा कमाएंगे भोग नहीं करेंगे, अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा फ्लैट नहीं बनाएंगे, तब जीवन का मूल्य क्या है, क्या लक्ष्य है, उसका बाद में है ना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ जस्य कर्म, अभी शरीर नहीं मिला है गद्दा जैसा काम करने के लिए। मुंबई में देख रात 12 बजे का काल आ रहे थे, देख रहे थे वो बस में ना बुरा जैसा पैकिंग होकर जा रहे हैं, रात 12 बजे बुरा समझते हैं ना आप है? जो भी है, बड़ा बड़ा बैगेज जैसा भीतर पैकिंग होकर जा रहे, पैसा कमाने के लिए गद्दा हो जाते हैं, नहीं जीवन का लक्ष्य ही नहीं। तत्व जिज्ञासा, ये शरीर क्यों मिला है, एक निवृत्ति मार्ग को आने के लिए शरीर मिला है, ये कॉन्शियसनेस हमारा भक्त लोग का बिल्कुल रहना चाहिए, मुझे शरीर का चक्कर में नहीं जाना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस कब आएगा, कब आता है, चेतन महाप्रभु ने ये उपाय भी बताया है, इतना आसान नहीं है शरीर का बंधन से, हम सुनते हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काम क्रोधर दास हयाम तार लाती खाए, काम क्रोधेर दास हयाम तार लाती खा, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तब तो निवृत्ति मार्ग में आना संभव है। काम क्रोधर दास हया तार लाठी खाए लाठी समझते हैं ना, क्या हिंदी में लाठी बोलते हैं, लात काम लात लगाता है, क्रोध लात लगाता है, माया भी लात लगाता है, बाल बच्चा भी लात लगाता है, लेकिन गद्दा क्या होता है वो सह लेता है, ये मेरा लात धड़ाम लात लगता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन सोचता नहीं ये मेरा परिवार की है, ये जिम्मेदारी लेना है, गद्दा है ना, गद्दा क्या सोचता है, हैवी लोड लेता है, फिर सोचता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरा परिवार है। हर जीव को यही लात मिलता है, कोई चाहे परिवार का हो चाहे कोई भजन नहीं जो नहीं करता है ना, वो काम क्रोध का भी लात खाता है। काम क्रोधर दास हया तार लाठी खाए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, साधु को क्या बोला है महाप्रभु ने, वैद्य चिकित्सक है उनका, साधु का मेडिसिन में उसका उसका भी मेडिसिन देते हैं ना, क्या मेडिसिन देते हैं, दो मेडिसिन है साधु जी का, तार मंत्रे उपदेश पिशाची पलाय, कृष्णा भक्ति पाए तबु कृष्णा निकटे जाए, चैतन्य चरितमृत तो पीजी कोर्स है ना, इस भागवत का सिद्धांत उधर है सब। गुरु जी का दो चीज है, मंत्र और उपदेश। किसी को भूत लग जाता है ना क्या करते हैं पता नहीं आपको, गांव में है ना भूत, आजकल मुंबई में कौन भूत है, ये तो सब भूत है इधर वो तो लग जाएंगे किसका ऊपर, भूत क्या लगेगा, भूत से भी डेंजर है, भूत क्या है। गांव में है, मैंने देखा हूं खुद, एक छोटा लड़की थी, वो गए थे किनारे, जब मैं अल्टर बना रहा था गंजाम में उनका जिला में, वो गए थी स्नान करने के लिए, वो उनका भीतर घुस गया, उनको पूछ रहे तुम कौन हो, वो बोल रहे मैं छोटा लड़की थी, हमारा घर इधर था, मेरा बाबा ने मुझे मार दिया, एक लाठी में प्रहार कर दिया, मेरा मरण हो गया, क्योंकि मैं खेत में थी, देखभाल कर रही थी, तो गाय घुसकर खा लिया, मुझे तो पता नहीं है, मैं छोटा था, लेकिन पिताजी आए तो मुझे लाठी में इतना जोर से लगाया कि मेरा मरण हो गया, वो घुस गए, वो बोल रहे उनका इतिहास, लेकिन शरीर किसका है, हमारा शरीर ये भूत लगा है ना हम लोग को, क्या भूत लगा है, माया भूत है, पिशाची भोगने के लिए हर समय, पिशाची जब आ जाता है ना, हमारा आत्मा का जो कर्म है धर्म है कृष्ण दासत्व है, भूल गए हम, पिशाची लग गए हैं, शरीर का भीतर घुस गए, चलो तुम मुंह करो, एंजॉयमेंट करो, फोन लगाओ, इधर क्या हो रहा है, नेट में देखो ये हो रहा है, इधर देखो ये हो रहा है, ये भूत है ना, भूत चलाता है, आदमी को कंट्रोल कर लेता है ना, उसका जो शरीर है उसका अभी भूत का कंट्रोल, पिशाच के कंट्रोल में, हम किसी का कंट्रोल में अभी है, माया का, माया कहां रहा है, कहां अधिकार क्या है हमारा शरीर को, पता है ना, माया मन को आलिंगन करता है, ये जड़भर चरित्र में बहुत सुंदर है, आत्मानो आलिंगितम, माया ने आत्मा को आलिंगन कर, आलिंगन क्या बोलते हैं पता होता है ना, गोद में लेकर बैठा है मन को, भाई तुम मेरा पास रहो, क्यों जाते हो भागवत क्लास में, क्यों जाते हो साधु का पास, क्यों जाते हो, ये क्या भागवत पढ़ने से क्या फायदा होता है, ये सब मन है ना, मन को ग्राम कुटक बुला है, कुट चक्र है, सिद्ध सामने लिखा है जथा ग्राम कुटक, मन ने जीव को एक प्रवृत्ति मार्ग में डाल देता है, भोगने के लिए प्रेरित करता है, विस्परिंग इंग्लिश में बोलता है ना, धीरे धीरे बोलता है अरे थोड़ा जा ना उधर, उधर जाओ थोड़ा, अच्छा चीज मिलता है खाने के लिए, इसी बीच पर जाओ ना, मन एक कौन है, मन ने माया से आलिंगित होकर हमको पिशाच जैसा काम कर रहा है, जथा ग्राम कूटक, सिद्ध सामने लिखा है, ग्राम कूटक आपको पता है ना, है? पता नहीं है, गांव में कोई कोई आदमी होता है ना, आपका बात सुनेंगे उसको बता देंगे, उड़िया में कहा बात है, एक घर है मौसी से घर है पीउसी, दोनों जो है ना, दोनों का साथ संबंध है, मिलजुला कर उनका बात इधर बोल देता है, इधर बात उधर झगड़ा लगा देता है, जथा ग्राम कूट कहा, एक गांव में मैं सुना था शायद महाराज श्री से, कहां से सुना था, एक गांव में ऐसा एक बुढ़ी थी, उनका यही प्रयास था, मन ऐसा है, ये सोचना चाहिए गल्प नहीं है, मन का यही है, मन हमको एक प्रवृत्ति मार्ग में डालता है, लेकिन हमको दो काम करना है, गुरुदेव का मंत्र और गुरुदेव का उपदेश पकड़कर ये निवृत्ति मार्ग में हमको जाना है। मन क्या करता है, एक जत्था ग्राम कूट कह, गांव में बुढ़ी था, देखा कि सबका बीच में क्या झगड़ा लगा देते हैं, झगड़ा लगा देती थी, सब झगड़ा में रहती ना, वो आनंद में रहते, ठीक है, लेकिन देखा एक पति और पत्नी दोनों का बीच कुछ नहीं होता है, कितना वो प्रयास किया लेकिन झगड़ा दोनों का बीच नहीं होता है, तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों झगड़ा नहीं होता है, सब झगड़ा में रहते ये नहीं रहते, ये दोनों का बीच मुझे झगड़ा करना चाहिए, तो कितना प्रयास लगाया नहीं हुआ, तुमने एक उपाय सोचा और पति को बोला देखिए तुम्हारा पत्नी ये राक्षसी है, ये राक्षसी है, राक्षसी समझते है ना, डीमन है, राक्षसी है। पति ने सोचा नहीं, मेरा पत्नी कितना सुंदरी है, घर गृहस्थ का काम सब संभालता है, सब संभालती है, लेकिन ये बोलती है, बूढ़ी बोलती है कि राक्षसी है। तब पत्नी का पास गया, पत्नी को बोला, माता जी को बोला, तुम्हारा स्वामी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, मर जाएगा, तुमको पता है ना, तुम्हारे स्वामी का शरीर में क्या बोलते हैं, लून हा? नमक ज्यादा हो गया है, शरीर में ज्यादा नमक हो जाने से मर जाता है ना आदमी। तुम रात में देख लेना, तुमको टेस्ट करना होगा ना, टेस्ट नहीं करके तुम पता चलेगा कि ज्यादा नमक हो गया है। और पति को क्या बोल दिया कि पत्नी राक्षसी है, जब पति सो गया पत्नी को तो नींद नहीं हो रहा था, तो उनको टेस्ट करना, मेडिकल टेस्ट करना है। अब पत्नी जब पति जब सो गया, पत्नी ने जीभ में चाटना शुरू कर दिया, तो पति सोचा ये तो राक्षसी है, सचमुच लाठी लेकर उसको भुलाई किए, भागो 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 तुम राक्षसी हो, भागो चलो। ये उदाहरण महर्षि दे रहे थे कि ये ग्राम कूटक है, मन ऐसा ही जथा ग्राम कूटका, मन का यही काम है। मन कभी हमारा भलाई नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है, और इसी का साथ हमारा दोस्ती है। मन जो बोलता है ना उसको उपेक्षा करना है, कभी उनका बात नहीं मानना चाहिए। और दूसरा क्या करना है, गुरु जी का वाक्य को पालन करना चाहिए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबू कृष्ण निकट जाए, कृष्ण भक्ति पाए तबू कृष्ण निकट जाए। चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग में यही उपाय है। पिशाची माया है ना, मन को आलिंगित करके हमको विषय में प्रेरित करता है हर समय, विस्परिंग करा, तुम इधर जाओ, ये भोग करो, आराम से सो जाओ, ये करो वो करो, मन का बात को नहीं सुनना चाहिए। और मंत्र और उपदेश, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है ना, प्रभुपाद जी ने सारा जगत में यही शिक्षा दिया है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, ये छोटा बात नहीं है जीवन में। प्रभुपाद जी का इतना छोटा, मैं जिसको उड़िया में स्लोगन बोलता हूं, जिसे हमारा भारतीय लोग स्लोगन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जय हिंद, जय हिंद बोलते हैं ना, हमारा इस्कन का यही स्लोगन है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सत्य है, हम लोग को सुख नहीं लगता है, हमारा अपराध होता है ना, लेकिन आप देखिए बाहर लोग जो आते हैं ना मंदिर में कीर्तन होता है, वो इतना आनंद उठाते हैं वो इतना आनंद में, मैं जब भी मंदिर जाता हूँ उन लोग को देखता हूँ, भक्त को नहीं देखता हूँ। अरे भक्त लोग तक उनका तो पता नहीं चलता है, अति परिचय तो भज्ञा हरे कृष्ण करते करते उनका भी अति परिचय हो गया, हरे कृष्ण कोई वैल्यू नहीं है। बाहर लोग को देखिए ना इतना आनंद उठाते, मजाक उठाते, बहुत आनंद लगता है। उड़ीसा में आप देखेंगे ना हमारा अष्टप्रहर कीर्तन होता है, घूम घूम कर कीर्तन करते हैं, वो इतना आनंद में कीर्तन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का लीला याद आ जाएगा, इतना भंगी से क्या बोलते हैं पांव को इधर उधर करके कीर्तन करते, बुढ़ा लोग पान वगैरह खाते हैं लेकिन नाम में इतना मत है, और बूढ़ी लोग आ जाता है ना वो बट बट कर ऐसे कीर्तन करते हैं, नाम में इतना शक्ति है। कल युग में ठाकुर जी ने सब दे दिया है, और इसी को ही प्रभुपाद हमको सिखाया है, ये हमारा स्लोगान है। गुरुदेव का मंत्र और उपदेश, गुरुदेव का जो सेवा के लिए उपदेश दे रहे हैं, बार बार गुरुदेव को पूछना चाहिए, गुरुदेव आप कैसे सुखी होंगे अब बताइए, मैं प्रभुपाद जी ने कितना बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास पत्र लिखा है, आप कन्फर्म कीजिए मैं क्या करूं। निश्चित रूप से अरविंद ने बताया है ना, निश्चितम ब्रूहीतन में निश्चित शब्द लगा है, मैं सन्यासी बनूंगा या युद्ध करूंगा, निश्चित रूप से निर्दिष्ट रूप से बताओ, गुरु जी को यही पूछना चाहिए। कभी मन को इधर उधर नहीं करना चाहिए कभी नहीं। और गुरु जी जो बोलते हैं ना, एक मन एक ग्राम कुटक है ना, वो इधर थोड़ा इंटरप्रिटेशन कर देता है, इसलिए प्रभुपद लिखा है क्या, आज इट इज, जो बोला है उसको करना है, उसका परिणाम क्या है हमको सोचना नहीं चाहिए, कभी चिंता नहीं करना चाहिए, परिणाम क्या है ठाकुर जी के हाथ में। गुरु जी के हाथ में, हम क्यों सोचने वाले? हमको निभाना है, सेवा ही निभाना है, सेवा ही करना है। प्रभुति मार्ग में यही चेतना हमारा जागृत होना चाहिए कि ज्यादा सेवा ठाकुर की कैसा करूं, यही निभूति मार्ग में। और प्रभुति मार्ग में शरीर भोग को छोड़ना है, इसको तो हम छोड़ने के लिए बिल्कुल पीछे लग जाना चाहिए। जब गुरुदेव का आदेश पालन करेंगे और नाम कीर्तन करेंगे, स्वतः प्रवृत्ति मार्ग से रुचि हट जाएगा, स्वतः प्रयास करना नहीं पड़ता है। मंत्र उपदेश सेवा में लग जाएंगे ना। तो प्रभुपद ने बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखा है, यदि कोई किसी भौतिक उद्देश्य से भी भक्ति करता है तो भी ये पुण्यात्मा समझ जाता है, और क्योंकि वो कृष्ण के पास आया है, अतएव क्रमश भक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएगा। ध्रुव महाराज का उदाहरण प्रभुपद ने दिया। अगर दूसरा कोई भक्त है, कोई भक्त है, इसलिए पुण्यात्मा लगा है ना, सुकृति चतुर्विजा भजनते मम नियना सुकृति नो अरियोना सुकृतिवान। हम लोग के लिए कंसेशन आप मत सोच लिए, ठीक है ठीक है। मेरा दूसरा उद्देश्य, मैं आया हूं भक्ति करने के लिए। अरे अंजन में कोई दूसरा उद्देश्य लेकर आ जाता है ना, इधर ठाकुर जी उनको शुद्ध कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को पता चल गया ना, ज्ञान है ना। पुलिस जब कोई चोरी करता है ना, उसका ऊपर क्या होता है, धुलाई ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा धुलाई होता है, सस्पेंड, और पेंशन भी बंद हो जाता है, तीनों काम होता है। चोर तो चोर है, उसका लिस्ट में, हम लोग क्या है, पुलिस लिस्ट में आ गया ना, 10 साल 15 साल रह गया, गीता सुना, भागवत सुना, गुरु, तब तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, मैं भी ठाकुर, प्रभुपाद जी ने बोला है ना, ठाकुर जी भी बोला है, ठीक है, कोई कामना वासना है, मंदिर में रहना चाहिए। नहीं नहीं, कभी ये कंसेशन मन को नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम भक्त लोग सोचते हैं ना, इस जन्म में कुछ नहीं होगा, देखेंगे इस जन्म में भोग कर लेंगे, दूसरा जन्म में कृष्ण मिलेगा। प्रभुपाद जी बोलते, ये बोगस आइडिया है, डोंट थिंक अबाउट नेक्स्ट लाइफ, इस जन्म में मुझे करना है। प्रयास हम चालू रखना चाहिए। इस संघ के प्रभाव से ऐसा मन हो जाता है, इस जन्म में कुछ नहीं होगा, अच्छा प्रसाद मिलता है, बस भूख करो चलो, अरे दूसरा जन्म तुमको क्या मिलेगा पता है क्या मिलेगा? जन्म मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं है। ठाकुर जी का जितना संपत्ति हमने लुटाए हैं, इसलिए ठाकुर जी हमको जन्म देंगे? ब्रह्मस्व देवस्व राजस्व, उड़िया में कहावत है, कभी उड़िया में जो बुढ़ी लोग आदमी है ना, बुढ़ी आदमी है, वो गांव में उनको पता है, एक पेड़ में अगर नारियल बोलते हैं, नारियल गिर जाता है ना, आश्रम का है, आप ले आएंगे ना, थापड़ लगाएंगे, माँ ले जाओ, वो ठाकुर जी का है, वापस दे दो, घर में नहीं लेना चाहिए ठाकुर, आप उनको प्रसाद देंगे ना, वो 5 रुपया निकल कर देंगे, नहीं तो चावल वगैरह कुछ लाएंगे, नहीं वो ठाकुर जी का धन क्यों मैं खाऊंगा? कर्मी लोग का भी डर है, हम लोग का क्या हो गया है, भक्ति की बल पर पाप करने के लिए, ये नाम अपराध है ना, बल पर, हम तो भगवान के भक्त हैं, इसे क्या होता है? तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारा पीछे स्टाम्प लगा है, ठाकुर जी लगाए, यार तुमने खुद लगाए हो, तुमने मानते हो कि मैं भगवान की भक्त हूं, कोई मानने से कोई भक्त नहीं होता है, मान लेने से कोई मन मान लिया है मैं भगवान का भक्त हूं, ठाकुर जी माना है क्या, गुरु जी माना है आप, हम भक्त हैं, ये बल पर हम पाप करेंगे, ठाकुर जी का धन को लुटाएंगे, ये तपस्वी का आश्रम है प्रभुपाद, इसकन तपस्वी का आश्रम, प्रभुपाद जी का आश्रम है, तप करके प्रभुपाद बनाए हैं, आवश्यक से जो अधिक भोग करता है ना, उसका भजन नहीं होगा, कभी भक्ति नहीं होगा। हमारे गुरुदेव ये हर समय कहा करते थे, एक बार किसी भक्त ने भिक्षा दिया था, पहले जमाने में 10 पैसा बोलते हैं ना, 10 पैसा 5 पैसा ऐसा था ना, एक रुपया इधर उधर हो रहा था काउंटिंग में, 10 बार गुरुदेव गिन रहे थे, तब एक ग्रस्त भक्त ने बोला, गुरुदेव 1 रुपया के लिए आप इतना क्यों, 10 बार गिन रहे कितना, गुरुदेव मूर्ख, अरे ये ग्रस्त लोग 1 रुपया दिया है ना ठाकुर जी की सेवा के लिए, अगर 1 रुपया ठाकुर जी की सेवा में नहीं, मुझे तो 1 रुपया मिल जाएगा, इन लोग का क्या कल्याण होगा जिन्होंने 1 रुपया दिया है, उसका अर्थ ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहिए, एक रुपया के लिए। हम लोग को परवाह नहीं पड़ता है। कभी कभी बोलते हैं ना भक्त लोग, महाराज क्या चिंता है, बहुत है। क्या बहुत है, किसका है संपत्ति? प्रभु जी का है ना। भोग कभी नहीं करना चाहिए भक्ति में। ये भी आप आ गए फिर वही चक्कर में, वही प्रवृत्ति मार्ग में आ गए। ये दंड है। आप मत सोचिए अगर ठाकुर जी का कोई संपत्ति, लाइट जल रहे है ना, आवश्यक नहीं तो बंद करना है, नहीं दंड मिलेगा। हमारे उड़िया में कहावत है, आप भोजन का बाद क्या करते हैं, फेंकते हैं। बहुत आदमी है ना, थोड़ा खाते हैं ज्यादा फेंक देते हैं। फेंक हम जितना फेंकते हैं ना, उसको मिल जुला कर जब एक मील हो जाता है तब आपको उस दिन फास्टिंग करना होगा। ठाकुर जी नहीं देते खाने के लिए, तुम फेंका है ना, समझते हैं ना। थोड़ा खाते हैं और फेंक देते हैं डस्टबिन में, मुझे ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए। फेंकने वाले जितना हम फेंकते हैं ना, वो मिलजुल कर जब एक प्लेट हो जाता है उस दिन खाना बंद हो जाता है, तुम खाने को नहीं मिलेगा, चाहे रोग आए चाहे गुस्सा में आए, नष्ट किया है, दंड मिलेगा। भक्त लोग का कभी भक्ति नहीं होगा जब ठाकुर जी का संपत्ति को लुटाएंगे, भोग भी ज्यादा करेंगे, कभी भक्ति नहीं होगा। ये सत्य बात, हम देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। हम आए हैं ठाकुर जी को देने के लिए, लेने के लिए नहीं। अभी हमारा ऋण ज्यादा हो गए हैं ऋण ऋण बोलते हैं ना हिंदी में, ज्यादा हो गए। मुंबई में फ्लैट, एक फ्लैट कितना, एक कमरा 30,000 जूह में ना, 30,000 रुपया। देख लीजिए हमारा कितना फैसिलिटी, और प्रसाद दो टाइम, मेनू बना लीजिए, आपको तो पता है तो कितना, उतना सेवा हम करते हैं। भजन हो जाएगा, भजन ऐसा एक चीज है क्या, आप मनवा भी बोल दिए कि मेरा मैं दीक्षा ले लिया हूं, मैं हरे कृष्ण करूंगा, हरे कृष्ण क्या तुम्हारा संपत्ति है? भगवान की है, भगवान के नाम है, भगवान की भगवान देख रहे हैं उनका मनोभाव क्या है। बहुत सावधानी होना होगा। ठाकुर जी की पैसा है, ठाकुर जी की घर है, ये सोचना चाहिए। ममत्व भाव संस्कृत में कहे ना, ममत्व भाव, ये मेरा है। जब तक ये भाव नहीं आएगा तो भजन नहीं होगा, वही प्रवृत्ति मार्ग में हम रहेंगे, निवृत्त मार्ग नहीं जाएंगे। ये मेरा है, कुछ भी नुकसान हो रहा है ये ठाकुर जी का है। आत्मचेतना, इसको आत्मचेतना बोलते हैं। आप ये मत सोचिए ध्रुव महाराज को जैसा प्रभुपाद जी ने बोला है, नहीं, ध्रुव महाराज का कामना था वो ठाकुर जी को मिलने के लिए गए तो कामना विनाश हो गया। लेकिन ध्रुव महाराज का उद्देश्य क्या था? ठाकुर जी को मिलना है, ठाकुर जी से बर लाना है। हम क्या बोलते हैं, ठाकुर जी के घर में है, हम बोलते इस जन्म में नहीं होने वाला है, इस जन्म में ठाकुर से मुझे साक्षात नहीं होगा, तो ठीक है। नहीं, ध्रुव महाराज ने ये नहीं बताया, मुझे मैं ठाकुर को साक्षात करूंगा, उसे बर लेकर आऊंगा, ये डिटर्मिनेशन था। इसलिए जब ठाकुर को दर्शन किया ना, परिवर्तन हो गया। स्थाना भयस्थितु प्रभुपाद जी ने लिखा है, हरिभक्ति शुद्ध हृदय से लाकर। बहुत चिंतन करके, हम लोग चिंतन करके बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने चिंतन नहीं किया है, ठाकुर जी उनको सब स्पूरण कर देते। इसको स्पूरण बोलते हैं, क्या लिखना है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, मैं जब तात्पर्य खुद पढ़ता हूं मुझे आनंद लगता है। अरे किसने लिखा है इसको? प्रभुपाद जी ये कहा करते हैं, ये सत्य है। ठाकुर जी जब स्पूरण देते हैं ना, आप जो बोलते हैं जो लिखते हैं आपको पता नहीं चलता है। उस समय बुद्धि, आपका जो बुद्धि त्रिगुणातीत बुद्धि है ना, त्रिगुण बुद्धि है ना, उसको प्रीडोमिनेट कर देते हैं, नीचे डाल देते हैं। ठाकुर जी बुद्धि का ऊपर आ जाता है, इसी से लिखवाते हैं, जो कुछ भी बुलाते हैं सब लिखा है प्रभुपाद जी ने। लेकिन हमारा लक्ष्य यही है, श्लोक में है ना, निवृत्ति मार्ग में जाना है हमको, छोड़ना है शरीर सुख, छोड़ना है ठाकुर जी के लिए जीवन देना, जीवन देना। एक संकल्प लेकर एक युद्ध है, जैसे युद्ध होता है ना बॉर्डर में, क्या होता है, मारना है, पीछे नहीं आना है। ये भक्ति ऐसा ही, इस शरीर को त्याग करना है ठाकुर जी की सेवा करके। एक युद्ध है, पीछे जाने वाले और कभी कभी भक्त लोग ऐसा कर देना, नहीं नहीं मेरा कामना है, मेरा वासना। अरे भाई तुम्हारा है तो कामना है वासना, युद्ध चल रहा है ना, जब तक युद्ध चल रहा है तब विजय किसका पराजय किसका पता चलता है क्या? जब तक हम भक्ति योग में सोलमाला जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का आदेश पालन कर रहे हैं, तब युद्ध चल रहा है, हमारा परास्त नहीं हुआ है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। माया जीता कि हम जीता, अभी चल रहा है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने यही कमेंट्री लिखा है, बाध्यमान अति मदभक्तम अजित विजितो विषयेन्द्रिय प्रायो प्रगल्भया भक्त्या। श्लोक एकादश स्कंद में इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य लिखा है। भक्त कभी कभी काम क्रोध का माध्यम से परास्त होता है, लेकिन ये भक्ति योग नहीं छोड़ता है ना, अभी भी टीका है, भजन कर रहा है ना, उनको परास्त नहीं बोल सकते हैं, परास्त हो गया। नहीं नहीं नहीं, भक्ति योग छोड़ना ही परास्त है, हम लोग को युद्ध करना है। गुरु जी की बल लेकर सुन रहे थे ना, अच्युत बलाश्रय गरिष्ठ गरिष्ठ चरण उपासना, गुरुदेव का चरण को उपासना करके बल प्राप्ति होकर युद्ध करना है। जो युद्ध तो अभी चल रहा है, हमको निवृत्ति मार्ग में प्रवेश करना है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रश्न है
हरे कृष्ण महाराज, जैसे आपने बताया कि बहुत जगह पे आप बताए, उस दिन भी बताया कि गुरु का उपदेश और मंत्र को पकड़ के उससे हम छूट जाएंगे, तो मंत्र तो हम लिए हैं और ध्यान पूर्वक जब करने का प्रयास करते हैं, कभी नहीं करते हैं, उपदेश जब आता है तो फिर हम लोग अपना लॉजिक लगा देते हैं,
तो दिमाग वाले हैं ना आज, बहुत तेज दिमाग वाले हैं आजकल,
और लॉजिक भागवतम से निकलता है, प्रभुपाद के बुक से, कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा, हो सकता है गुरु महाराज ने ऐसा कहा हो, लेकिन ऐसा मतलब ये हो सकता है,
ये सबसे बड़ा अपराध यही करते हैं आजकल भक्त लोग, इंटरप्रिटेशन करते हैं वो। कभी आपको पता है ना, लायर लोग क्या करते हैं, वकील बोलते हैं ना, वकील लोग क्या करते हैं आपको पता है ना, वो सिर्फ ढूंढते हैं चोर को मुक्त करने के लिए कहां कहां वो पॉइंट्स है। वकील भी एक चोर है ना, एक दोषी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, बचाता है, वो भी एक चोर है ना। हम लोग ऐसा चोर हो गए, सेवा चोर, खुद का सेंटिमेंट के लिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी का वाक्य कहां मिलता है, प्रभुपाद जी ने ये बताया है, तब उसको हमारा जो अहंकार है उसको स्थापित करने के लिए नहीं, गुरु का वाक्य कैसा मानना चाहिए। पूर्व आचार्य का प्रतिनिधि कौन है, प्रभुपाद, हमारा पूर्व आचार्य का प्रतिनिधि प्रभुपाद, प्रभुपाद जी जो बोला है और उसका ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, आचार्य ने ये बोला है, नहीं आचार्य जो बोला है ठीक है लेकिन हमारे लिए नहीं, अर्जुन जो बोल रहे हैं वो सत्य है लेकिन अर्जुन के लिए नहीं है, ये वेद धर्म है लेकिन अर्जुन के लिए लागू नहीं है। शास्त्र में जो है ना वो कर्माधिकारी के लिए है, ज्ञानाधिकारी के लिए है, भक्ति अधिकारी, कौन कौन अधिकारी है उनको पता कृष्ण को है। गुरु जो होते हैं ना, प्रतिनिधि जो होते हैं ना, आचार्य लोग का प्रतिनिधि होते हैं और शास्त्र का भी प्रतिनिधि होते हैं। कभी कभी हम युक्ति करते हैं शास्त्र में ऐसा बोला है, गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, जो वास्तव में गुरु होते हैं ना, सत्य परंपरा में गुरु होते हैं, वो शास्त्र की भी प्रतिनिधि है और आचार्य लोग का परंपरा में की प्रतिनिधि है, उनका मुख में जो आता है ना वही अल्टीमेट क्या बोलते हैं, अंतिम उपदेश है। इसमें कोई आड़ नहीं करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ पालन करना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। शास्त्र में बहुत कंडीशन है, कभी कभी प्रश्न आता है अगर गुरुदेव कोई बी कर्म का बात बोल रहे हैं, जो कर्म नहीं करना चाहिए तब क्या करना चाहिए, आपका मन मान नहीं मानता है, नहीं गुरुदेव ने बोल रहे हैं पाप कर्म करने के लिए मुझे नहीं करना चाहिए, अगर गुरु तो है तो शुद्ध लेकिन बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, बोल देते हैं हम करने के, कैसे करेंगे, मन बोलता है ना वेद धर्म में नहीं पाप है, अगर तुम समर्थ नहीं हो करने के लिए फिर निरपेक्ष रहना चाहिए और प्रार्थना करना है, गुरुदेव आप ये बोल रहे हैं मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कमजोरी, मैं शिष्य नहीं हूं, लेकिन आप इनकार मत कीजिए, नहीं नहीं ये भूल है, ऐसे करने का कहीं ना का अधिकार भी हमारा नहीं। एक स्थान में रहकर भजन कर सकते हैं लेकिन चैलेंज नहीं। ज्यादा आजकल क्या हो रहा है, ज्यादा दिमाग वाले भक्त लोग आएंगे है ना, पढ़ाई लिखाई वाले है ना, वो सोचते हैं कंप्यूटर ब्रेन इधर ही लगाएंगे हमें। अरे उधर कंप्यूटर ब्रेन नहीं लगाना है, इधर इधर सुखदेव गोस्वामी का ब्रेन चलता है, उधर तुम्हारा कंप्यूटर ब्रेन है, उधर इधर सिर्फ इतना ही है आज इट इज। इसका मतलब है पूर्व आचार्य लोगों ने जैसे परंपरा को पालन किया है हमको भी ऐसे करना है, चाहे हम पढ़ाई लिखाई हो चाहे गद्दा भी हो, कुछ ऐड करना नहीं, कुछ सब्सट्रैक्ट करना। आप कितना पढ़ा लिखा है, गुरुजी जो बोल रहे हैं उसका इतना ही करना। समझ में नहीं आता ना, मैंने सुना है प्रबोधानंद महाराज यही बोल रहा था मुझे, प्रबोधानंद महाराज का महाराज श्री कह रहे थे प्रभुपा जी का ग्लोरिफिकेशन में। आप तो मुंबई की घटना आपको पता है ना, प्रभुपा जी मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे थे सी बीच में, तो कुछ क्लब लोगों को देखा तो प्रभुपा जी ने बोल दिया क्या गुड मॉर्निंग, देखिए तब सब ने सोचा रूपा जी सबको हरे कृष्ण बोलते गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं। देखिए ना ये हमारा बुद्धि का, यही है हमारा बुद्धि, और गुरु का बुद्धि क्या है, जीवन में भजन नहीं हो रहा है तो ये अच्छा है, इस जन्म में नहीं हुआ तो दूसरा जन्म में होगा। कभी खुद का बुद्धि मत लगाइए, टेस्टर मत लगाइए 440 वोल्टेज में, फ्यूज चला जाएगा। गुरु जी से बुद्धि मत लगाइए, प्रभुपाद से बुद्धि मत लगाइए, फ्यूज चला जाएगा। बद्ध जीव हमारा गुरुदेव ये कहा करते थे, बद्ध जीव का इस स्वभाव है, कितना बार तुम बोलो कि अपराध मत करो, गुरुदेव को मनुष्य बुद्धि मत करो, लेकिन हो जाता है क्योंकि खुद का दिमाग है। इसलिए हनुमान जी ने यही प्रार्थना किया राम जी को, राम जी मेरा जितना विद्या है ना, जितना बुद्धि है सब निकाल दीजिए, गद्दा बना दीजिए, आप प्रभु है मैं सेवक हूं, इतना ही चाहिए। जीने के लिए भक्ति योग में ही सबसे बड़ा साधन, भगवान मेरा गुरुजी और प्रभु मेरा, ये मेरा प्रभु है मैं दास हूं, बस सेवा करना है और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्धि है ना गड़बड़ी में आपको डालेगा, किसी भी दिन ही डाले। प्रभुपाद ने क्या बताया, प्रभुपाद कुछ नहीं बताया लेकिन उनका मन में चिंता, प्रभुपाद जी हरे कृष्ण बोल रहे थे आज गुड मॉर्निंग बोल दिए, दूसरा दिन जब गए तब वही लोग ने पहले प्रभुपाद जी को बोला कि हरे कृष्ण, प्रभुपाद गुड मॉर्निंग नहीं बोले, वो लोग हरे कृष्ण बोले, तब तो उन लोग को याद आया कि गुरु क्या है। क्या वो भक्त लोगों को पता नहीं था कि प्रभुपाद कौन है, लेकिन बद्ध जीव का ये स्वभाव होता है, दिमाग लगाता है, दिमाग त्रिगुणा अतीत नहीं हुए उनका बुद्धि, व्यवसाय में बुद्धि नहीं है ना, विश्व प्रवणक बुद्धि है, खूब सावधान रहना चाहिए। मानना गुरु जो बोल रहे मानना चाहिए, बाद में क्या होगा हम क्या करते, प्रणाम पहले दर्शन कर, इसको करूंगा तो क्या मिलेगा, नहीं नहीं पहले करना चाहिए, उसका बाद प्रणाम क्या है गुरुजी का हाथ में, कृष्ण का हाथ, हम दिमाग लगा देते हैं, ये ठीक नहीं, करना है। उड़िया में कहावत है, मैं कहा था शायद नृसिंह कथा में, जैसा कोई गुंगा आदमी है लेकिन काम करता है, चासी काम करता है, साहू कही पचिला धान रे मही दे, मालिक बोला है ना तुम जाओ, क्या बोलते हैं उसको, एक लकड़ी लेकर माटी खोदने का बाद उसको क्या करते, समान करते हैं ना, उसको बोला कि तुम जाओ उसको लेकर समान कर दो, खेती हुआ था लेकिन उस खेती का पास क्या था, पके हुए गेहूं था, धान था, उसका ऊपर भी मही चला दिया, जो लकड़ी को उसको भी चला दिया, क्योंकि वो तो गुंगा तो बुद्धि नहीं है, ज्यादा ज्यादा बुद्धिमान नहीं है ना, बोला तुम दे दो दे दो। तब एक आदमी ने देखा पूछा, ए तू ये क्यों कर रहे हो ना, मालिक ने मुझे बोला। उसका बुद्धि ठीक नहीं है लेकिन वो जैसा कर रहा है हमको ऐसा कर, मालिक ने गुरु जी ने ऐसा बोला है करने के लिए, बस मैं कर रहा हूं, बस ऐसा बुद्धि लेकर चलना है, और कुछ नहीं करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट कुछ करना नहीं चाहिए, तब तो सफल आ जाए। हम सुन रहे थे ना विश्वात्मक व्यवसायत्मक बुद्धि का विश्वनाथ चक्रठाकुर क्या कमेंट्री में लिख रहे हैं, स्वप्न अपनी न अन्य अभिलषणीय, मेरा स्वप्न भी दूसरा चिंता नहीं है, मद श्रीमद गुरु उपदिष्टम मंत्रम चरणम परिचरणम मम जीवनम मम जीवातु, ये मेरा जीवन है, दूसरा कोई चिंता नहीं। यही आजकल के हम पढ़ाई लिखाई आदमी है ना, थोड़ा दिमाग है लगा देते हैं, 440 वोल्टेज में टेस्टर लगा देते हैं, और टेस्टर भी जाता है और खुद भी मरते हैं, ये होता है ना। टेस्टर किसके लिए है? ये जो छोटा छोटा प्लग के लिए। आप 440 मिनट लगाएंगे क्या होगा, आप भी मरेंगे ना, मरते हैं ना, हम मरते हैं, टेस्टर भी जाता है, सब भक्त भजन भी जाता है, माला जोला सब चला जाता है, यही होता है। हाँ ठीक है, टाइम। हाँ
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मेरा जिज्ञासा है कि जैसे कोई गलत गुरु है उनके ऊपर अगर हम आश्रित करते हैं तो भी सर्वनाश होता है, अगर कोई सही गुरु है तो जैसे अभी भगवान भी बताते हैं आचार्य माम बीजानिया नाम मन्ने तो कर दीजिए नाम अत्य बुद्धि श्रीयत सर्वदेवमय गुरु, और गीता में भी बताते हैं कि समर्पित होकर के सेवा भाव से प्रश्न लेकर के जाना है तत्वदर्शी, वो तत्वदर्शी जो है गुरु है और जो तत्वदर्शी नहीं है उनमें क्या भेद है और कैसे उसका पहचान करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है संसार में, लोग थके जा रहे हैं।
हम लोग के लिए ये नहीं है प्रश्न, हम लोग के लिए जो जैसे आप पहले क्या बोला, कौन सा गुरु, गलत गुरु, गुरु तो कभी गलत नहीं होते हैं, ये पहला शब्द है। गुरु का शब्द यही होता है जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है, बाहर दुनिया में चलता है, जो बाबा वगैरह है ना वो तो गुरु खुद ही बन जाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है, गुरु तत्व का प्रश्न है। हम लोग के लिए कभी गुरुजी को संदेह नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, और हमको पता चलेगा कैसे गुरु कौन है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, गौर नित्यानंद को। दुई भाई हृदय र ख्याली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत बड़ भक्ति रस पात्र। महाप्रभु जिसको नित्यानंद प्रभु जिसको करुणा करते हैं ना, उसको प्रार्थना करना चाहिए जी आप कृपा कीजिए मुझे गुरु से मिलाइए, जिसे मेरा गुरु बुद्धि हर समय उनको उनका पूरी गुरु बुद्धि रहेगा, कभी लघु बुद्धि नहीं आएगा, वो साक्षात करा देते हैं। प्रमाण क्या है ये तो अभी बहुत भक्त लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आप बताए ना किसी आरे शादी तुम करेंगे, मैं बताऊंगा, जो शादी करेगा वो अपना चॉइस में शादी करता है, हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे ये महाराज से दीक्षा लो ये महाराज से दीक्षा नहीं लो तो मेरा अपराध हुआ कि नहीं, मुझे महाराज का स्थिति पता है, तुमको पता है क्या, ये तो बताना मेरा उचित नहीं है, मुझे पता है महाराज का स्थिति क्या है, मैं बता दूंगा तो तुम सोचेंगे ये तो ऑर्डिनरी आदमी है, महाराज ने बताया तुम तो अपराध किया, अरे तुम ठाकुर जी को प्रार्थना करो, तुम प्रभु जी को प्रार्थना, और क्या प्रार्थना, ये मेरा गुरु है क्या प्रमाण है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, हमारा गुरुदेव ये कहा करते थे, अगर इस सीरियस स्टूडेंट है गंभीर छात्र है नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, वो गुरु जी को साक्षात करने से एक इनर अट्रैक्शन आता है, इनर अट्रैक्शन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर में एक आकर्षण आता है, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है बाहर का नहीं, और उनका वचन सुनने से आपका संदेह मन में चला जाता है, परमात्मा जो सुपर सोल है ना वो सबका अंदर में ना वो कॉन्फिडेंस देते हैं ये तुम्हारा गुरु है। अगर हम किसी को बोल देते हैं ना वो मन में उसको बैठा लिया है, फिर भी मन में तो कॉन्फिडेंस उनका नहीं है, सुपर सोल से कन्विंस नहीं हुआ है, मन में हुआ है, हमको पता है महाराज का स्थिति क्या है, उनको पता नहीं है, अगर उनका माइंड को हम कन्विंस कर दिया कि ले लो बाद में उसका मन में क्या आता है, दूसरा महाराज को देखेगा तो सोचेगा कि नहीं नहीं ये महाराज तो अच्छा है, मैं तो गुरु ग्रहण कर लिया मेरा बड़ा भूल हो गया, तो वो अपराध किया कि नहीं, दोनों का पास अपराध किया, लेकिन दीक्षा ले लिया है ना तो क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं, तो क्या करेगा, जिस महाराज का ऊपर उसका मत बुद्धि होगा उनका दोष देखने लगेगा, हाँ महाराज ठीक है लेकिन यही है, एक ग्राम कुटक मन ना छिद्र अन्वेषण करेगा वैष्णव के, इसीलिए गुरु के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी कौन शुद्ध भक्त है आपको पता है, मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूं, हम शुद्ध भक्त है क्या, हमको तो पता नहीं है, मैं माया का दास हूं, आप मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दीजिए। देखिए ना प्रभुपाद जब विदेश गए गुरु के लिए कौन तरस रहे थे, उस समय पता था महाराज श्री को पता था, गोपाल कृष्ण पूज्यपद गोपाल कृष्ण महाराज श्री को पता था, पूज्यपद सुबह स्वामी महाराज को पता था, चारू महाराज को पता था प्रभुपाद जी गुरु है, हमारा गुरुदेव को पता था, ये जादृच्छिक कृपा इसको बोलते हैं, ये सुपरसोल अरेंजमेंट करते हैं, घूमते 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 देख लिया है ना, एक आकर्षण आता है, यही मेरा गुरु है। सब पढ़ने के लिए विदेश गए थे और प्रभुपाद ने वो पाठ को छुड़ा दिया, चलो ये मेरा कॉलेज में एडमिशन करो, विदेश कॉलेज छोड़ दो, ये कॉलेज है, चले आओ, ये सुपरसोल का अरेंजमेंट है। तो गुरु जी के लिए प्रार्थना करना होता है। मैं उड़िया में ये बोलता हूं कि मैं थोड़ा खुला आदमी, उड़िया में बोलता हूं, इधर उधर इधर तो मुझे थोड़ा डर लगता है, फिर बोल देता हूं, तो आप लोग बुरा मत सोचिए। शादी तो एक बार होता है, लेकिन दो बार हो जाता है, छोड़ दे तो शादी कर सकते हैं, होता है ना। जमीन भी एक बार खरीद करते हैं फिर वो बेच सकते हैं, लेकिन गुरु जी गुरु ग्रहण करेंगे ना एक बार। इसीलिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, इसी में हमारा भलाई है, अपराध ना हो गुरु चरण में। भजन तो नहीं हो रहा है ये तो ठीक है, हमारा शक्ति नहीं है, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए वैष्णव की चरण से। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी मुझे कृपा कीजिए, किसी से मेरा भला है, कौन शुद्ध भक्त आपको पता है, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए। कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है भीतर से, कि हमारा उदर भी परमात्मा है, गुरु जी का उदर भी, उसको दोनों का संबंध हो जाता है, एक अट्रैक्शन संबंध हो जाता है। देखिए ना प्रभुपाद जी के डिसाइपल लोग देख लेते हैं ना, एक एक शब्द में पकड़ लेते हैं, नहीं यही शुद्ध भक्त है, ये कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री श्री राधा रास बिहार जी की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, संबित भक्त विष्णु बृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।